आज की आयात देखते हैं 234 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लदीन युतवफ्फौना, और वो लोग जो फौत हो जाएं तुम में से, मिनकुम तुम में से, व यदरून अजवाजन, और छोड़ जाएं बीवियां। अब यहां पे इस आयत के अंदर बेवा की इद्दत की बात हो रही है। पहले हमने किसकी इद्दत पढ़ी थी? तलाक याफ्ता की इद्दत, कि सलासत कुरू थी, और वो भी जिसको रजई तलाक हुई हो, एक या दो तलाक हुई हो, तो फिर वो सलासा तकरू इंतजार करे। तीसरी बली में भी तो सलासा कुरू ही है, लेकिन वो आयत में हमने पढ़ा था कि उसमें रुजू का हक था ना, इसलिए मैं कह रही हूं। यहां पे बेवा की इद्दत की बात है, तो वो क्या करे जिसका शोहर फौत हो जाए और बीवियां या एक बीवी छोड़ जाए, या तो रब बस ना, वो इंतजार करें, वो रोक के रखें अपने नफ्सों को। यानी इसका मतलब है कि वो फौरी शादी ना करें, इसके बाद वो अपने आप को रोक के रखें। और इस वर्ड के आने से ये पता चलता है कि औरत में भी एक नेचुरल ख्वाहिश होती है कि उसके उसका एक कंपेनियन हो, साथी हो, कोई आदमी हो जो उसका सहारा बने और उसकी रफाकत में वो रहे। लेकिन अब उसको अपने आप को रोकना है, कब तक? अरबाता अशहुरिन व अशरा, यानी 4 महीने और 10 दिन। अब ये 4 महीने और 10 दिन यानी उसकी इद्दत ठहरी, ये है उसकी इद्दत एक औरत की। और इस इद्दत के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो उसके ऊपर ममनू है? सबसे पहली बात जो हमने देखी वो ये है कि निकाह नहीं हो सकता। नंबर टू बात हमने ये देखनी है, इसके बारे में जो अहकामात आते हैं तो उनमें पता चलता है कि औरत किसी किस्म की जेबो जीनत नहीं कर सकती। जेबो जीनत से मतलब क्या है कि यानी जिस चीज से भी वो अपने आप को ब्यूटिफाई करती है वो नहीं कर सकती। और किस किस चीजों से औरत अपने आप को ब्यूटिफाई करती है? यानी अपने कपड़े ऐसे पहनना जो शोख हो या खूबसूरत कपड़े हों, बल्कि सादे कपड़े पहने, सादा लिबास जिसको कहते हैं हम घर के कपड़े। अब हमें एक कपड़े होते हैं ना जो हम कहीं पहन के जाते हैं किसी दावत पे, या कि कोई आ रहा है तो हम उसके लिए कोई स्पेशली कोई जोड़ा निकालते हैं, तो वो नहीं, बल्कि वो ही जो सिंपल घर के कपड़े होते हैं। कुछ जरूरी नहीं है कि उनका रंग काला ही हो या सफेद ही हो, कुछ लोगों ने काला या सफेद सिर्फ वो ही पहने रखते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। बस ऐसा हो कि बहुत शोक ना हो। आपको समझ आ गई होगी, जिन जिनको कपड़ों को हम घर के कपड़े कहते हैं ऐसे ही बस वो घर में पहने रहते हैं, वो जब कोई आने भी लगता है तो हम वो चेंज कर लेते हैं, तो वो सिंपल कपड़े जिनको। दूसरे क्या चीज होती है जिससे औरत अपने आप को ब्यूटिफाई करती है? मेकअप करना, खुशबू लगाना, ज्वेलरी पहनना, मेहंदी लगाना, और इसी तरह अपने बालों को डाई करना, ये सब चीजें हैं जिनसे औरत को परहेज करना है। इसी तरह जैसे वैसे ही ये नहीं है सही, लेकिन जो प्लकिंग करती हैं औरतें, वो कुछ दिन बाद कहने लगती हैं कि हमें हमारी तो आईब्रोज ऐसी हो गई हैं, ऐसी हो गई, तो ये चीजें सब इन दिनों में हराम है। ये तो वैसे ही हराम है, लेकिन इन दिनों में इसके लिए आप ये सोचेंगे किसी चीज से भी अपने आप को, मसलन फेशियल हेयर वैसे उतारती हैं, अपर लिप्स हैं या कुछ है, तो ये चीजें इन दिनों के अंदर नहीं करनी चाहिए। एक्सेप्ट सिर्फ एक बात है कि औरत को अगर पीरियड्स आते हैं तो वो अपने आप को जब साफ करे, अपना गुसल लेगी, तो उस वक्त जैसे हमें पता चलता है कि खुशबू का फाहा लगा सकती है अपने यानी प्राइवेट पार्ट्स पे, सिर्फ उस सूरत में जायज है। वो तो वैसे भी उसको लगाना है, लेकिन जब वो इद्दत में भी है तो ये सिर्फ एक जायज है। इस तरह से हमें पता चलता है कि 4 महीने और 10 दिन, ये वो 4 महीने और 10 दिन है, याद रखिए, जो कमरी साल के हैं, लूनर कैलेंडर के हैं। बहुत सारी औरतों को इस बात का नहीं इल्म होता और फिर वो क्वेश्चन करती हैं कि अच्छा फलान डेट को शुरू, क्योंकि हम ज्यादातर ये दूसरा सोलर कैलेंडर ही यूज करते हैं तो हमें इसका अंदाजा नहीं होता, हम उसी को गिनने लगते हैं। हालांकि आपको पता है कि कमरी कैलेंडर में दिन थोड़े होते हैं शमसी की निस्बत। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी लड़की की रुखसती ही नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ, तब भी उसको ये इद्दत गुजारनी है, ठीक है। और दूसरे, आजकल ये बहुत कॉमनली कहा जाता है कि जो बूढ़ी औरत है उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। नहीं, बूढ़ी है या जवान है, सबके लिए इद्दत है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि जो लोग जो औरतें बड़ी उम्र की हो जाएं उनके लिए रिलैक्सेशन है, ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने निकाल लिया कि वो इद्दत नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है। नहीं, अच्छा और क्या चीज जायज नहीं है उनके लिए? एक हो गया निकाह, एक हो गया बनाओ सिंघार में, ये जितनी चीजें आ गई बनाओ सिंघार की, कपड़ों के बारे में आ गया। फिर उसके बाद एक और चीज जो उनके लिए मना है वो ये है कि वो घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर ना निकले यानी चाहे वो घूमने फिरने का इरादा है, किसी को विजिट करने का इरादा है, या कुछ है, एक औरत ने अपने मेके जाने की इजाजत चाहिए थी, तो आपने फरमाया तुम उसी घर में रहो जिसमें शौहर की वफात हुई है, हत्ता कि इद्दत खत्म हो जाए। तिर्मिसी की ये रिवायत है। तो इसलिए औरतों को ये चूंकि आदत नहीं होती घर में बैठने की, तो 4 महीने 10 दिन उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि हम घर में कैसे गुजारें। तो ये अल्लाह का हुक्म समझ के गुजारना चाहिए। हाँ, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो इसमें भी है जाहिर है, जैसे और चीजों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि डॉक्टर की कोई अपॉइंटमेंट है, अदालत में कोई केस है जिसके लिए जाना जरूरी, बैंक का कोई काम होता है बाज दफा कि वो जाना जरूरी हो जाता है, या औरत बेचारी खुद ही कमाई करती है, अगर वो नहीं कमाएगी तो बच्चे हैं वो कैसे करे, अपने गुजारा कैसे करेगी, वो छुट्टी इतनी लंबी लेगी तो उसको फायर कर देंगे वो। हाँ, इस्लामी मुमालिक में बाज में ऐसी देखें सुभान अल्लाह, ये उनकी सहूलत है कि कोई औरत अगर बेवा हो जाती है तो 4 महीने 10 दिन तक उसको सैलरी देते हैं, वो पूरी सैलरी देते हैं और वो घर में भी बैठे। लेकिन जाहिर है दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है, तो वहां पे औरत को काम के लिए जाना है। इसी तरह अगर कोई उसका नहीं है जो ग्रोसरी लेकर आए, कोई उसका नहीं है उसके बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला, तो उसको खुद ही निकलना ही पड़ेगा, लेकिन फिर हदूद में रहे, फिर वो इन मेकअप करके नहीं निकलेगी कि नहीं अब तो बाहर जाना है तो अब अपने आप को कुछ ठीक करके निकलूं, ऐसे कपड़े पहनूं वैसे पहनूं। जाहिर है अपने जिलबाब में जाएगी, अपने उसमें जाएगी, जो जो तरीका है उसके मुताबिक ही चलना चाहिए, जो पर्दा है उसके मुताबिक वो करके जाएगी। इसके अंदर एक चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई थी कि बाज औरतें खेतों में काम करती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी थी कि आप जाके काम कर सकती हैं खेतों, क्योंकि वो जाहिर है उनके गुजारा है उसी से, या दरसो तदरीस के लिए जा सकती हैं, कि जैसे कोई बच्ची पढ़ती है अगर उसका साल जाया हो जाएगा अगर वो नहीं जाएगी, तो साथ पढ़ाई भी कर रही है या कहीं कुछ सीख रही है या पढ़ा रही है ऐसा, तो वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। हाँ, ये आजकल जो सहूलत है ऑनलाइन होने की, उसकी वजह से फायदा उठाया जा सकता है। तो ये देखना चाहिए ना, अपनी भी समझ इस्तेमाल करनी चाहिए कि जहां पे बहुत ही जरूरी है, नहीं कुछ और हो सकता, वहां पे इंसान इस चीज को समझे कि सिर्फ वहां पे निकल सकती हूँ। ये नहीं कि वेकेशन पे जा रहे हैं आप, हम इस जगह जा रहे हैं, आप क्या करें, दिल घबरा रहा है, अब फलाने के घर चले जाएं, अब थोड़े दिन उसके घर रह लिए, फिर दूसरे बच्चे के घर चले गए। नहीं, एक ही जगह रहना चाहिए, इल्ला ये कि वो घर ही किराए का है, वो घर में नहीं रह जा सकता, शोहर का घर जो था वो किराए का घर था, वो खाली करना पड़ रहा है, तो फिर वो अपने मेके जाके गुजार सकती है, या किसी अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके पास जाके किसी एक के पास वहीं पे रहे, फिर वहीं पे अपनी पूरी इद्दत करे, तो लेकिन घूमती फिरती ना रहे। वो ये नहीं कर सकती कि वो मतलब डिफरेंट घरों में रहती रहे और इस तरह से अपनी इज्जत के दिन वो गुजार रही है। अच्छा, ये भी एक हमारे यहाँ बार बार सवाल पूछा जाता है कि औरत क्या वो दूसरे आदमी किसी के सामने जा सकती है? देखिए, वो गैर आदमी के सामने जाना जैसे बाकी दिनों के लिए वैसे इसके लिए, ये नहीं कि इद्दत में कोई खास एहतमाम है कि जो कोई खास इसका हुक्म लग जाता है। ये जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं, इनके अलावा कोई और चीज नहीं। गैर महरम के सामने पहले भी जाना पर्दे में ही था, कोई जरूरत है तो जाहिर है जाएंगे, अगर नहीं जरूरत है तो खामखा नहीं किसी गैर महरम के साथ बैठना होगा। और इसमें तो ज्यादा इसलिए एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इसमें तो निकाह भी नहीं हो सकता किसी के साथ, तो जरा इसमें एहतियात का मामला बरतना चाहिए। लेकिन जैसे दूसरे दिनों में किसी गैर महरम के साथ फालतू क्यों बैठा जाए, क्या जरूरत है, या क्यों फालतू बात की जाए, इसी तरह इन दिनों के लिए भी। असल में हम बाकी दिनों में हमें कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए इन दिनों में खास ही वो करने लगते हैं। बाकी दिनों में कोई चादर नहीं लेनी, कोई पर्दा नहीं करना, इद्दत के दिनों में समझना कि ये जरूरी है मेरे लिए। बाकी दिनों में जिनके साथ भी बैठे रहे, इद्दत में समझना कि किसी आदमी के साथ नहीं बैठ सकते, तो वो सभी दिनों के लिए। फ इजा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब वो पहुंची अपनी इद्दत को, फला जुनाह अलैकुम, तो नहीं कोई गुनाह तुम पर, फी मा फअलना फी अनफुसिहिन्न बिल मारूफ, उसमें जो वो करें अपने नफ्सों के बारे में मारूफ तरीके से, यानी जब वो अपनी इद्दत गुजार लें, इद्दत को पहुंच जाए, मतलब है इद्दत उनकी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, इद्दत खत्म हो गई, तो अब क्या है, अब कोई गुनाह नहीं है उस पर कि वो जो भी करें अपने नफ्सों के साथ, यानी अब वो अपने लिए जो भी डिसीजन लें। देखिए एक कंवारी जो होती है ना, उसकी तो सारा का सारा उसके पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन जब कोई एक औरत बेवा होती है या डाइवोर्स्ड होती है ना, तो उसको ज्यादा हक होता है अपने बारे में फैसला करने का, इसलिए कि उसने अपने बच्चों को भी देखना है, उसने बहुत सारी चीजें देखी, और अक्सर ऐसा होता है कि घर वाले इतने इंटरेस्टेड भी नहीं रहते ना, पेरेंट्स इतने बूढ़े हो चुके हैं या पेरेंट्स में से कोई है ही नहीं है, बहन भाई हैं उनको इतनी परवाह ही नहीं है, तो अब वो बेचारी क्या करे, उसको कोई ना कोई अपने लिए तो स्टेप उठाना है, वो अगर कहीं शादी करना चाहती है तो बाज दफा ससुराल वाले रुकावट बन जाते हैं कि नहीं तुम हमारी बहू हो, हमारे बेटे की निशानी, अगर ये जाएगी तो हमारे तो बच्चे भी साथ चले जाएंगे इसके, यानी हमारे बेटे के बच्चे इसके साथ ही चले जाएंगे, तो हम तो इसको नहीं जाने देंगे और उसको शादी नहीं करने देते, या अपने घर वाले बाज दफा रुकावट बन जाते हैं कि नहीं अब नहीं, बस ये कि तो लोग क्या कहेंगे कि इसको शादियों का पड़ाव है, यानी इतना इसको बुरा समझा जाता है, हालांकि क्या उसका राइट नहीं है, ये सोचना चाहिए अल्लाह ताला इस कंडीशन में किसी औरत को भी ना लेकर आए और हर एक के खामिद को उसके सर पे सलामत रखे हमेशा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, यानी एक बेवा का ये हाल कर दिया जाता है कि उसको किसी जिसकी शादी हो रही है उसके करीब नहीं जाने दिया जाता, नहीं इसका साया ना पड़ जाए, कितने हम सुपरस्टिशियस बातों में आज भी हिंदुआना चीजों के अंदर आज भी पड़े हैं, जैसे वो सती हो गई तो इसको तो जिंदा कोई सती कर दिया ना, इसको तो जिंदा कोई ये हक इससे छीन लिया कि अब तूने तो जीना ही नहीं, अगर वो कहीं बनाव सिंगार कर लेगी तब भी उसके ऊपर बातें, अगर किसी से बात करते हुए उसको देख लेंगे तब भी उसके ऊपर बातें, खासतौर पे उनकी बात करें जो जवान बेवा हो जाती है, तो ना उसको शादी करने देते हैं ना ही उसको जो है वो यानी ऐसे चैन से रहने देते हैं, तो ये बड़ा अलमिया है, जबकि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, कोई तुम्हारे ऊपर हर्ज नहीं जो भी वो करें अपने नफ्सों के साथ, अगर वो नहीं शादी करना चाहती, बाज दफा नहीं करना चाहती, वो कहती नहीं मैंने नहीं करनी, बस मैं अपने बच्चों के साथ ही जिंदगी गुजारूं, तब उसको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम करो, तो ये उसके ऊपर छोड़ना चाहिए कि अब वो क्या चाहती, एक उसको दुख ये कि उसका शौहर फौत हो गया, दूसरा जो माशरा उसको जाने नहीं दे रहा, कुछ करने नहीं दे रहा, तो बेसिकली कहने का यहाँ पे मकसद है कि लेट हर डिसाइड फॉर हर सेल्फ कि उसने क्या करना है, बिल मारूफ लेकिन मारूफ तरीके से हो, यानी कोई गुनाह करने का वो ना हो, कहीं छुप के कोई ऐसे काम नहीं कर रही, कोई ऐसे खिलाफे शरा काम नहीं कर रही, तो तब ठीक है, शादी कर रही है ना जो एक्सेप्टेबल चीज है, तो अनलेस के वो ऐसी चीज कोई करे तब तो ठीक है, आड़ बनना ही चाहिए, फिर तो यहां से ये भी पता चलता है कि अगर किसी को भी खिलाफ शरा कोई काम करते देखें तो दूसरों को कुछ रोक टोक करनी चाहिए ना, खासतौर पे जिनको अथॉरिटी होती है उनको कुछ कहना चाहिए, वरना वो लोग भी गुनाहगार होंगे कि जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी इसके पास आ रहा है जा रहा है, जिनके साथ भी उठ रही बैठ रही है और ऐसे करे, वो फिर सही नहीं है, तो मारूफ तरीके से वो जो भी करे उसमें तुमने रुकावट नहीं बना, लेकिन अगर मारूफ तरीके से नहीं कर रही, कुछ ऐसा उठा रही है जिसमें वो भी गुनाहगार हो रही है, तो देखने वाले भी फिर चुप ना रहे कि हमें क्या, आप जो मर्जी करती रहे, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला के अहकामात इतने प्यारे हैं ना, कुरान पाक में ऐसे भी हो सकता था कि देखिए 1, 2, 3, 4 बस लिस्ट दे दी जाती लॉज की, ये लॉ है ये लॉ है ले ये लॉ, आप देखिए हर आयत के बाद कहीं वत्तकुल्लाह की तकरार है, डरो अल्लाह से, कहीं ये अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को पता है, पिछली में आयत में हमने देखा कि अल्लाह देख रहा है जो भी तुम कर रहे हो, इसमें आया अल्लाह बाखबर है, ये ना समझना अल्लाह को पता नहीं है जो तुम ये क्या करने लगे, किस तरह उनको सता रहे हो या किस तरह उनके साथ सलूक कर रहे हैं या वो औरतें अपने लिए क्या कर रही हैं, अल्लाह को सब चीजों की खबर है, सुभान अल्लाह, जब ये बात आ जाती है ना तब हम कहते हैं कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है और मैंने मानना है, जब तक ये चीज नहीं होती तो क्या हर एक अपनी मनमानी करना चाहता, हर एक चाहता है कि मैं जैसे मेरा दिल कर रहा है वैसे करूं, 4 महीने 10 दिन तो बहुत ज्यादा है, ये तो सो के लिए बहुत है, तो ये तो नहीं हमसे होता। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने इस दीन में एक आसानी रखी है 4 महीने 10 दिन की, क्योंकि इससे पहले ना 1 साल तक औरत जो थी वो सोग मनाती थी शौहर का, और 1 साल में क्या होता था, उसको एक जगह पे बंद कर देते थे कमरे में, अल्लाह ताला माफ करे, वहीं उसकी गंदगी, वहीं उसका सब कुछ, ना उसने नहाना है, ना धोना है, ना चेंज करना है। आपको पता है इतनी, यानी आप हैरान होंगे इस बात को भी सुन के, कि वो 1 साल के बाद जब उसको निकालते थे ना, तो वो औरत इस कदर गंदी हो चुकी होती थी कि वो अपने आप को रगड़ती थी किसी जानवर के साथ ना, जैसे बकरी या इसके साथ, तो बार दफा वो उसकी बदबू से मर जाता था जानवर, ये उसकी हालत होती थी। इस्लाम ने तो 4 महीने 10 दिन की सिर्फ सोग की मुद्दत दी, और इसके अंदर भी औरत नहा सकती है, चेंज कर सकती है कपड़े, और मैंने आपको बताया कि अगर पीरियड से चेंज गुसल करती है, तो वो अपनी शर्मगाह पे रुई के ऊपर खुशबू लगा के, उस जमाने में तो ऐसे होता था, अब जो भी किस तरह की खुशबू है वो उसको अपनी, यानी बैड स्मेल को खत्म करे, उस ओडर को खत्म करे। सुभान अल्लाह। तो अब ये प्रेग्नेंट की क्या होगी, कि जैसे हम पढ़ा था हमने तलाक के बारे में, इसी तरह इसमें भी प्रेगनेंसी में अगर किसी का शौहर फौत हो जाता है, तो उसकी जो इद्दत है वो वजाए हमल है, यानी जब तक कि उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, चाहे बच्चा 1 दिन बाद ही पैदा हो गया, चाहे बच्चा 6 महीने बाद पैदा हुआ है, चाहे 7, 8, 9 महीने लग गए, वो उसी में रहेगी। ठीक है, और उसके दौरान वो कोई निकाह नहीं कर सकती, जैसे मैंने कहा कि ये इद्दत का टाइम है उसका, और बाज दफा ये बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, कि अच्छा हम इसके अंदर मेकअप ना करें, हम इसके अंदर ये ना करें। हजरत सा असलमिया जो थी, उनके खाविंद का जब इंतकाल हुआ, उस वक्त वो हमल से थी, और चंद रातें ही गुजरी थी तो बच्चा पैदा हो गया, जब नहा धो चुकी तो लिबास वगैरह अच्छा पहन लिया, तो हजरत अबू सनाबिल ने ये देख के फरमाया, क्या तुम निकाह करना चाहती हो, यानी अब जाहिर है जब तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं या कुछ बनाओ सिंगार किया, तो उसका मतलब तुम शादी करने का तुम्हारा इरादा है, अल्लाह की कसम जब तक 4 महीने 10 दिन ना गुजर जाए तुम निकाह नहीं कर सकती। तो ये सुन के वो खामोश हो गए, और शाम को नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और मसला पूछा, तो आपने फरमाया जब बच्चा पैदा हो गया उसी वक्त तुम इद्दत से निकल गई, अब अगर तुम चाहो तो बेशक निकाह कर सकती हो। ठीक है, तो एक तो ये 4 महीने 10 दिन की हिकमत क्या है, देखें एक होती है रीजन और एक होती है हिकमत, तो हमें दोनों में फर्क पता होना चाहिए। हमने ये जो इद्दत की मुद्दत 4 महीने 10 दिन है ना, इसका क्यों, इसके ऊपर कोई भी औरत ऐसी कंडीशन में आ जाए तो वो अमल करेगी, रीजन क्या है, रीजन ये है कि अल्लाह का हुक्म है। हिकमत क्या है, हिकमत कोई एक दो हिकमतें हो सकता है मैं आपको बता दूं, लेकिन बेशुमार हिकमतें हैं जो मुझे नहीं पता, ना किसी उलमा को पता होंगी, हो सकता है टाइम आने के बाद लोगों को कहीं पता चले, हो सकता है पता ही ना चले, लेकिन हमने ये नहीं सोचना कि पहले हमें हिकमत पता चलेगी तो अमल हम करेंगे। रीजन अमल का क्या होना चाहिए, कि अल्लाह का हुक्म, हिकमत इज सेपरेट, हिकमत साइड पे रखें किसी भी हुक्म के लिए, ये याद रखिए असूल। हिकमत आपको रोजे की पता है या नहीं पता है, क्या रीजन है आपका रखने का रोजा, कि मैं दुबली पतली हो जाऊं, स्मार्ट हो जाऊं, ये आपको बड़ा हेल्दी रखता है, नहीं, ये तो हिकमतें हैं, लेकिन रीजन क्या है, अल्लाह का हुक्म है बस। इसके बाद क्या हमारे लिए कोई और चीज होनी चाहिए जिसका हम वेट करें, कि अच्छा ये पता चले कोई हिकमत तो फिर है, और वो हिकमत हो सकता है मुझे इतनी ना अपील करे, मुझे, मैं पहले ही दुबली पतली हो सकता हूं, तो मुझे और कोई दुबले पतले होने का कोई शौक नहीं, तो क्या मैं फिर रोजा ही ना रखूं। तो इसलिए हिकमतें लोगों, बाज दफा तो कुरान में कोई हिकमत की बात उसकी बता दी जाती है, बाज दफा नहीं होगी, लोगों ने खुद सोची होंगी, तो हम हिकमतों का इंतजार तो नहीं करेंगे। इस तरह यहां पे बाज लोग कहते हैं वाई Why 4 months and 10 days ही क्यों, नहीं कुछ और भी हो सकता था, 10 days को छोड़ के आप 20 दिन कर लेते, 5 महीने कर लेते, 4.5 महीने क्यों नहीं हो गए, 4.25 महीने क्यों नहीं हो गए, 3 महीने क्यों नहीं हो गए। एक तो इसके अंदर जो उलमा ने कहा, उन्होंने कहा है पता चल जाए कि हमल है कि नहीं, बजाय किसी और के साथ शादी करने के, फिर अल्लाह ना करे कि पिछले शोहर का बच्चा हो और वो ना सब गड़मड़ हो जाए, क्योंकि जब कहीं और जाके शादी करेगी तो वहां पे हो सकता है वो समझे कि ये उसका बच्चा है, तो नसब ना गड़बड़ हो, इसलिए पता चल जाए कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। अब आजकल कोई कह सकता है, लेकिन आजकल तो प्रेगनेंसी टेस्ट है, हम तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। तो मैंने जैसे आपको बताया, हम ये नहीं कह सकते कि बस ये हिकमत है, अब हो सकता बहुत सारी और हिकमतें होंगी, ये तो एक बात है। दूसरी, अब जो औरत इस मरहले से गुजरती है ना, ये उसके लिए इतना बड़ा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, उसके लिए इतना बड़ा गम का पहाड़ टूटता है, वो किसी एज में भी हो, उसके लिए वो तो जख्म भरने का वक्त चाहिए। अगर फौरन ही उसके रिश्ते आने शुरू हो जाएं, या उससे रिश्तों की शादियों की बातें होने शुरू हो जाएं, तो ये उसके लिए कितना तकलीफदेह है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये एक टाइम रखा। और फिर अब साइंस कहती है कि यूट्रस की भी एक मेमोरी होती है, और उस मेमोरी को वॉश अवे होने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है। सुभान अल्लाह, ये तो अब बातें पता चल रही ना, पहले जमाने में तो नहीं ये पता थी, और आगे आगे तहकीक होती है, वल्लाह वालम क्या क्या बातें समझ आती है। तो इसलिए ये उसको पीरियड दिया गया कि वो सोक कर सकती है। वैसे आपको ये मालूम है कि किसी का भी सोक 3 दिन से ज्यादा नहीं किया जा सकता, बल्कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जो औरत अल्लाह पे और कियामत के दिन पे ईमान रखती है, उसे 3 दिन से ज्यादा किसी मैयत पे सोगवारी करना हराम है। और यहां पे तो साल हा साल चलती रहती है, साल हर साल अल्लाह के, हत्ता के आने वाली जो ईद होती है वो भी नहीं हमने मनानी। क्यों नहीं मनानी भाई? क्यों? वो हमारी अम्मी फौत हो गई थी, वो तो 6 महीने पहले फौत हुई थी, लेकिन ये तो पहली ईद है इसलिए हमने नहीं मनानी। ये कहां से आपने लिया? अगर आपको ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि हराम है किसी और मैयत पे 3 दिन से ज्यादा सोग करना, सिवाय खामिंद पे 4 महीने 10 दिन एक औरत सोग कर सकती है। तो इससे पता चलता है कि औरत के पास सिर्फ ये है कि वो 4 महीने 10 दिन कर सकती, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये जो हमने रिवाज बनाए हुए हैं कि 3 दिन के बाद अगर कोई अपनी जॉब पे जाना शुरू कर दे, अगर कोई किसी दावत पे चला जाए, अगर कोई उस पे चला जाए, तो कहते हैं हाँ ये देखो ना, इनको तो दुख ही नहीं है अपने जाने वाले का, कितने बेशर्म है। तो लोग इस डर की वजह से भी बेचारे चुप करके बैठे रहते हैं। हालांकि कहा गया नहीं, 3 दिन के बाद, यानी जरूरी नहीं आप किसी पार्टी पे जाएं, लेकिन नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारें। वो जो 3 दिन सोक किया ना, वो उसका मतलब क्या है कि उसमें क्या है, उसमें इंसान 3 दिन, ये नहीं कि उसके बाद रो ही नहीं सकता, उसके बाद उसको कभी रोना आना ही नहीं चाहिए। जाहिर है कभी इंसान याद करेगा तो 10 साल भी गुजर जाएंगे तो उसको रोना आ सकता है, अरसा दराज भी गुजर जाए तो तब भी इंसान को कोई याद आता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो 3 दिन का फिर क्या मतलब है? यानी 3 दिन तक जो घर वाले हैं, जो उसके लवाहिकीन हैं, वो अपने मामूलाते जिंदगी जो है, उनके डेली जो वो काम करते हैं, चाहे जॉब है चाहे और जो काम, उनको साइड पे रखते हैं। ठीक है, और जो ताजियत करने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए अपने आप को अवेलेबल रखें। ठीक है, तो ये 3 दिन इसलिए कहा गया। अब अक्सर ये होता है कि लोग बहुत बहुत अरसे तक आते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां मुतासिर होती हैं। यानी अब वो, उन्होंने कोई काम करना है, मिसाल के तौर पे किसी ने कोई पढ़ाई करनी है, किसी की क्लासेस हैं, किसी ने स्कूल कॉलेज जाना है, या किसी की ऑनलाइन कोई ऐसी मसरूफियत है, या कोई काम है, या कोई जॉब है, लेकिन लोग आए चले जा रहे हैं। 3 दिन भी गुजर गए, हफ्ते के गुजर रहे हैं। अब जिसको जो टाइम सूट करता है वो कहता है मैं जी उस वक्त आ जाता हूँ, मैं तो उस वक्त आऊंगा, मुझे तो ये सूट करता है। नहीं, उसको उसके बाद देखना चाहिए कि कोशिश यही होनी चाहिए कि 3 दिन के अंदर अंदर किसी से ताजियत की जाए। उसके बाद आप वैसे कहीं पे भी मिलनी है, कहीं पे भी कुछ है, ये भी डिपेंड करता है ना कि जो वफात हुई है वो किसकी हुई है। बाज हादसाती ऐसी वफात हो जाती हैं, बाज ऐसी चीजें होती हैं जिसका सदमा बहुत ज्यादा होता है, बाज तबई अमवात होती हैं, उतना नहीं उस तरह से होता, कोई बड़े अरसे से बीमार ही था और उसकी वफात हो गई, तो 3 दिन काफी हैं। उसके बाद अब ऐसे ना किया जाए कि हफ्तों महीनों जा रहे हैं लोग और आ रहे हैं, और फिर उनके घर ही बैठे हुए हैं और फिर उठ ही नहीं रहे वहां से, और जब वीकेंड आया अपनी कोई मसरूफियत नहीं है तो जाके उनके घर डेरे जमा लिए, वहीं पे खाना पीना चल रहा है, वहीं पे कुछ है। तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ, आज देख लेना चाहिए कि घर वालों को कितनी तसल्ली की जरूरत है, कितनी उनको आपकी जरूरत है कि आप उनको टाइम दे। उस मुताबिक फिर खुद कॉमन सेंस भी तो यूज करनी चाहिए ना, कि किस तरह से हम, ये तो ना हो कि घर वाले अपने काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के मामूलात उन्होंने जारी कर लिए, हम जा रहे हैं ताजियत करने, क्योंकि हमारे पास एक रसम है, अगर हम ना गए तो वो बुरा ना माने। ये भी प्रॉब्लम है हमारा, तो हमें देख लेना चाहिए। अगर दूसरा ओके है और वो कह रहा है कि नहीं आपको नहीं आने की जरूरत है, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप नहीं जाए। वो जरूरी नहीं कि हर जगह हमने पहुंच के और अपनी अटेंडेंस लगवानी है, ठीक है? यानी 3 दिन गुजर चुके हैं, अब दूसरा बंदा नहीं चाह रहा, वो अपनी जिंदगी को रिज्यूम करना चाह रहा है, तो उसको करने तो दें, उसके बाद भी हम नहीं करने देते। तो इसमें देखना चाहिए हमें भी कि किस तरह से है। बाज दफा ऐसी जवान डेथ्स हो जाती हैं कि वहां पे फिर जाहिर है वो घर वाले भी आपकी मौजूदगी चाहते हैं और आपको बुलाते हैं, या कोई बैठना चाहता है आपके पास, या कोई बेवा औरत है, वो 4 महीने 10 दिन कहीं और नहीं जा सकती, वो चाहती है कि कोई आ जाए उसके पास बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, तो उसको टाइम दे सकते हैं। तो ये खुद देख के भी तो समझना चाहिए ना कि क्या हालात हैं, क्या इसके हैं। बस सिर्फ हर चीज को रसम नहीं बना लेना चाहिए, लेकिन ये हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि 3 दिन से ऊपर किसी का सोग नहीं है, और हम उसको सोग बनाते हैं, क्योंकि जब हम बार बार जाते हैं और बार बार लोगों से पूछते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ था, अच्छा फिर कैसे हुआ था, तो फिर अब हम फिर से उसको उदास कर रहे हैं, बजाय इसको कुछ जिंदगी में वापस रिटर्न हो, उसको हम बार बार उन्हीं चीजों से गुजारते हैं। एक लेक्चर है इस बारे में कि ताजियत कैसे की जाए, या इस तरह से कुछ उसका नाम है, अगर किसी को बताओ तो यहाँ पे लिख देंगे बाद में एडमिन्स में से, तो उसके वो अगर आप लोग सुन लें तो ज्यादा आप लोगों को इसका पता चलेगा। अच्छा, अब है वला जुनाह अलैकुम। अब ये जो विवाह है उसकी इद्दत के टाइम के अंदर, जो मैंने आपको कहा कि निकाह नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? मसलन है कि कोई इंसान, किसी को पता चला है कि कोई औरत बेवा हो गई है, अब 4 महीने 10 दिन अच्छा खासा टाइम है ना, तो 1-2 महीने बाद उसको लगता है कि अगर मैं इसके साथ शादी कर लूं तो क्या वो कर सकता है, क्या वो निकाह का पैगाम दे सकता है, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये बताया गया। वला जुनाह अलैकुम, और नहीं तुम कोई हरज तुम पे, फीमा अरत तुम बिही मिन खुतबत निसा, कि इस मामले में जो इशारेतन तुम करते हो साथ उसके औरतों से मंगनी के बारे में, यानी औरत को निकाह का पैगाम देना या रिश्ता डालना जिसको कहते हैं, तो गोल मोल इशारतन तुम कुछ ऐसी बात करते हो, औ अकनन तुम फी अनफुसिकुम, या तुम अपने नफ्सों में उस बात को छुपा लेते हो। यानी ये बताया गया कि सहाबा कराम जो थे वो ये सोचने लगे कि अगर निकाह नहीं कर सकते तो पता नहीं हमें दिल में भी अगर ख्याल आ गया किसी औरत का कि उससे शादी कर ली जाए, तो पता नहीं इस पे भी हम पे कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा। तो फरमाया नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं। असल में उनके माशरे ना हमारे से इस तरह से डिफरेंट थे कि वहां पे किसी बेवा या किसी डाइवोर्स्ड के लिए शादी करना इतना ईजी था कि जूं ही उसकी इद्दत गुजरती थी उसके लिए रिश्ते आने शुरू जाते थे, और एक नहीं बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे, क्योंकि जाहिर है आदमी भी 4 तक शादियां करते थे, किसी के पास 2 भी बीवियां हैं तो वो तीसरी कर लेगा, 3 है तो चौथी कर लेगा, तो वो कोई इतना मसला नहीं था। दूसरी बात यह कि बेवा को या डाइवोर्स को कोई बुरा नहीं समझा जाता था। आज के वक्त में तो खुद भी कोई डाइवोर्स हो ना आदमी, तो वो भी कहता है कि नहीं मुझे कंवारी मिले, मैंने किसी डाइवोर्स के साथ नहीं शादी करनी, मैंने किसी बेवा के साथ नहीं शादी करनी। तो यानी उस माशरे के अंदर ऐसा नहीं था, उनको कोई आउटकास्ट नहीं कर दिया जाता था। वो बैठी बैठी, आज तो जवान बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती है, बेवा और मुतलका के पास तो क्या ऑप्शन है, तो अल्लाह ही चाहे तो किसी को कोई रास्ता बना दे, अदरवाइज हमारे माशरे में चूंकि इनको इस चीज को एक्सेप्टेबल ही नहीं समझा जाता, और ये नहीं सोचा जाता कि अगर किसी की तलाक भी हो गई है तो कोई वजूहात होंगी, कोई कुछ होगी, बल्कि इसको बुरा समझा जाता कि कोई जरूर कसूर होगा ना इसका भी। तो इस तरह की बातें करने से परहेज करना चाहिए। अब यहाँ पे जो बताया गया ना कि वो तुम अपने दिल में छुपाए रखो, वो इसमें है कि इद्दत है। अब बहुत सारे लोग हो सकता है सोच रहे हो कि हम शादी कर लें, या कोई एक तो कोई गुनाह नहीं है इसके अंदर। यहाँ अगर आप इशारतन कोई ऐसी बात करते हैं, मसलन है कि मेरा भी इरादा शादी करने का है, या ये कह देता है कोई आदमी के जब इद्दत खत्म हो तो फिर मुझसे जरूर पूछ लेना, या मैं भी कोई दीनदार औरत देख रहा हूं, कोई ऐसी औरत देख रहा हूं जो नेक हो, जो इस तरह हो, इस तरह करके कोई ऐसी बात करना है, मगर साफ नहीं कहना कि मैं इसका रिश्ता डाल रहा हूं, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है? या दिल में भी छुपाए रखें कि अब इद्दत खत्म होगी तो फिर मैं रिश्ता डालूंगा, या गोलमोल बात कर लें, इशारतन बात करें, तो दोनों में कोई हर्ज नहीं है, ये कहा गया। आलिम अल्लाह, अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह को इंसान की सारी कमजोरियां पता है, उसके ख्यालात पता है, तो अल्लाह को पता है अन्ना कुम सतस्कुरू ना उन्ना, के तुम जरूर याद करोगे उनको, यानी तुम्हारे दिल में उनका ख्याल आएगा जरूर, तुम जरूर सोचोगे उनके बारे में, तो उसमें कोई ये अननेचुरल बात नहीं है। अल्लाह चाहता तो इसके ऊपर पकड़ सकता था कि क्यों इस बारे में सोच भी रहे हो जबकि उनकी इद्दत चल रही है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, अल्लाह को पता है कि तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा उनका, वलाकिन, ख्याल आना अलग बात है, लेकिन ला तुआइदूहुन नसरन, तुम उनसे बाहम वादे ना कर लो छुपके, यानी उनसे वादा कर लो कि बस अब ये तुम्हारी इद्दत खत्म होगी ना तो तुमने मेरे से ही शादी करनी है, और या फिर ये सोच लेना कि बाज लोग जिसको कहते हैं नॉलेज नहीं होता, जहालत है हमारे माशरों में इतनी इस कदर के पता ही नहीं होता, बाज दफा लोग ये करते हैं कि इद्दत में निकाह कर लेते हैं, तो अब इद्दत में जो निकाह है ना वो बातिल है। एक पहले मैंने बताया था फिस्क होना निकाह का, कैंसल होना, वो भी कुछ लोगों ने पूछा, मैं समझ नहीं आई कि कैंसल होना क्या मतलब, उस निकाह को इनवैलिड कर दिया। अब कैंसल, कैंसल जब कोई चीज हो जाती है तो फिर जाहिर ही बात है वो बस खत्म कर दी, लेकिन एक है बातिल, जैसे यहां पे मैं आपको बता रही कि इद्दत के अंदर अगर किसी ने निकाह किया वो निकाह ही नहीं है, समझ आ गई, वो निकाह ही नहीं है, वो निकाह हुआ ही नहीं, ऐसे लोगों को फौरन अलग कर दिया जाएगा, चाहे वो तलाक की इद्दत है चाहे वो बेवा की इद्दत है, वो निकाह नहीं होता कि इद्दत के बीच में ही निकाह कर दिया, इद्दत चल रही थी और कोई और प्रपोजल आया, मसलन तलाक वाली है, बेवा नहीं है, चलो बेवा को फिर भी कोई गम सदमे से गुजर रही है, तलाक वाली है, किसी और ने कोई पहले से ही पसंद करता था उसने डाल दिया रिश्ता, उन्होंने कहा चलो ये अच्छा रिश्ता आया फौरन कर दिया, नहीं ये नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि इद्दत कब से स्टार्ट हुई, इद्दत है ही अदद से ना, कि उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, तो यहां पे कहा गया तो ये गुनाह की बात है, उसका निकाह नहीं होगा, वो निकाह हुआ ही नहीं, क्योंकि जाहिर है वो इद्दत में हो ही नहीं सकता, फिस्क अलग चीज थी, ये बातिल है, तो इनसे तुम वादे नहीं कर सकते छुप छुप के। अब ऐसा सोचा कि औरत अगर एक गम से गुजर रही है तो अब वो गम की हालत में है, चूंकि अब जब गम में इंसान होता है तो वो इमोशनली भी ना इस कदर, किसी कोई भी उससे अच्छी बात करता है या कुछ है तो उसके ऊपर वो मतलब उसकी बातों में आ जाता है, जाहिर है इमोशनली वो वीक हुआ होता है, तो अब औरत उसकी बातों में आ गई, उसने दो चार चिकनी चुपड़ी बातें की, अब बाद में औरत ने सोचा कि नहीं मुझे तो यहाँ पे करनी ही नहीं थी, मैं तो उस वक्त इतनी गम में थी, मुझे कहाँ पता चला, मुझे तो जिसने कंधा दिया मैं तो बस वो उसी को सहारा समझ बैठी और ऐसे कर दिया और मैंने उससे वादा कर लिया, नहीं दोनों आपस में कोई वादा नहीं कर सकते, ये प्राइवेट में ये बातें हो ही नहीं सकती, वो उससे हाँ ले ले या चलो निकाह तो नहीं किया लेकिन उससे हाँ करा ली कि तुम बस हाँ कर दो कि तुम मेरे से ही करोगी, और आदमी सोचे ये अच्छा मौका है ना इस वक्त, ये जज्बाती हुई भी है इससे जो मर्जी कहलवा लो, और देखिए ये इसके अंदर भी कितनी हिकमत है, 4 महीने 10 दिन के इतनी हिकमत है कि औरत इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि इमोशनली ड्रेन्ड होती है, वो कुछ उल्टा सीधा फैसला भी कर सकती है, कोई उल्टा सीधा कदम भी उठा सकती है, अभी उस इतनी दिमागी तौर पे वो स्टेबल ही नहीं होती कि वो कोई सही फैसला करे, बाद में जब उसका गम जरा हल्का होगा तब वो कोई देख सकेगी कि हाँ मैंने इससे करनी है इससे नहीं करनी, लेकिन जिस वक्त उसके ऊपर ऐसे हालात हों ऐसी कैफियत गुजर रही है उस वक्त कोई भी उसको बातों में लेके ना दो चार प्यार मोहब्बत की बातें करके और उसको दिलासे दिलाने के उसमें उसके साथ क्लोज हो सकता है, इसलिए कहा गया नहीं, और हो सकता है इसी वजह से वो जो लोग कहते हैं कि नहीं गैर मर्दों से गैर महरम से सामने नहीं जाना, हो सकता है इसमें ये जिन लोगों ने भी निकाली हो ये बात हो उसमें कि कोई आपस के अंदर कोई इस तरह की निकाह की बात ना हो जाए या कुछ ऐसे, ये मैं अपनी तौर पे सोच रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों कहते हैं, इल्ला अन तकूलु कौलम मारूफा, मगर ये सिवाय इसके कि तुम कहो बात भली, यानी जो पहले बात गुजर गई ना, यानी सिवाय इसके कि भली कोई बात कह दो, यानी मारूफ तरीके से जिसको उर्फे आम में कोई बुरा नहीं समझा जाता, कि इशारतन कोई कह दो उसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी इशारतन कहने की, लेकिन ऐसे बिल्कुल रिश्ता नहीं मांग लेना। वला ताजिमु उकदत निकाही हत्ता यबलुग अल किताबु अजला, और ना तुम अजम कर लो निकाह की गिरा का, यहां तक के पहुंच जाए किताब अपनी मुद्दत को। यानी जब तक किताब अपनी मुद्दत को पहुंच जाए, मतलब जो लिखा हुआ है वो पूरा हो जाए। लिखा हुआ क्या है? अल्लाह ताला ने क्या लिख दिया? इद्दत, इद्दत लिख दी है। जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, तुम उनके साथ निकाह की गिरा का अजम नहीं कर सकते, शादी भी नहीं कर सकते, डेट नहीं रख सकते, रिश्ता नहीं मांग सकते, बात पक्की करना जिसको हम कहते हैं वो नहीं कर सकते, मंगनी नहीं कर सकते। जो कोई सोच सकता है कहे चलो हम निकाह नहीं करते, लेकिन चलो काफी दिन है, ये ना हो कि इद्दत खत्म हो और हमें पता ही ना चले और ये कहीं और ही ना रिश्ता डाल दें, कहीं आई मीन रिश्ता और कहीं करना बैठे, तो हम पहले पहले ही कह देते हैं इनको नहीं। ठीक है, कुछ भी इनमें से नहीं कर सकते, यानी बात फाइनल कर ही नहीं सकते, रिश्ता ही नहीं डाल सकते तो बात क्या फाइनल करनी। अच्छा एक बात आपको बता दूं, यही तलाके मुगल्लिजा वाली के लिए भी है। तलाके मुगल्लिजा है ना, जिसके 3 तलाकें हो चुकी हैं, उसकी इद्दत में भी उसको, तू रजई तलाक वाली को तो बिल्कुल ही हराम है, क्योंकि वो तो अभी उसकी पूरी तौर पे उसके कट ऑफ नहीं हुआ पीछे से, उसका तो वो एक तरह से खामिंद ही है कि रुजू कर लेगा तो खामिंद ही है, वो उसी के घर के अंदर रह रही है। अगर वो उसके घर से निकल भी गई है तो किसी का राइट नहीं है उसको इद्दत के अंदर तलाक का मैसेज किसी तरह भी भेजने का, क्योंकि अभी वो जब तक उसकी इद्दत खत्म नहीं हो जाती, उसके खामिंद के पास पूरा राइट है उसको वापस लेने का। तो फिर कैसे कोई और बंदा बीच में इंटरफेयर कर ले? अगर कोई और करेगा तो हो सकता है वो उसकी तरफ मायल हो जाए और पहले खामिंद से उसका दिल उचाट और ज्यादा हो जाए, तो उसमें तो बिल्कुल हराम है। लेकिन तलाके मुगल्लिजा वाली भी, जो बिल्कुल खत्म हो गया उसका रिश्ता पिछले खामिंद के साथ, 3 तलाकें हो गई हैं, उसको भी इद्दत का पीरियड जो 3 हैज है वो, उसमें भी उसके लिए कोई निकाह का पैगाम ऐसे ना भेजे, क्योंकि जाहिर है एक पिछला रिलेशनशिप टूटा होता है तो उससे भी हील होने में टाइम होता है, किसी के साथ इंसान ने जिंदगी गुजारी हो तो वक्त लगता है ना। हाँ लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिसका निकाह हुआ रुख्सती ही नहीं हुई और तलाक हो गई है, तो फिर उसके लिए कोई इद्दत नहीं है। लेकिन बेवा वाली में क्या है कि निकाह हुआ रुख्सती नहीं हुई और बेवा हो गई है, तो फिर भी इद्दत है। दोनों में फर्क है ये। ठीक है, वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम फहदरू, जान लो बेशक अल्लाह जानता है उसको जो तुम्हारे नफ्सों में है, बस डरो उससे। या तुम्हारे जी में जो बातें आती हैं, यानी या तुम्हें कोई चीज इनमें से बुरी लग रही है, तुम कहते हो ये क्यों ऐसे है, तो नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि ख्यालात को भी अल्लाह जानता है, तो डरो अल्लाह से। इसका मतलब है कि इंसान को अपनी सोचों पे भी पहरे बिठाने चाहिए, ये नहीं है कुछ भी सोचते रहे। ये होता है वसवसा, देखिए वसवसा तो हमारे बस में ही नहीं होता, वो तो शैतान की तरफ से वसवास आते ही रहते हैं। एक होती है एंटरटेन करना किसी सोच को, यानी प्लानिंग करते रहना, सोचते रहना, वो फिर वसवसा नहीं है। उस पे आगे से आगे सोचें, आगे से आगे ख्यालात, जिसको कहते हैं ख्वाब बुनते रहना, प्लानिंग करना, इरादे करना, फिर वो इंसान का अपना दखल है। जब वसवसा आता है फिर तो फौरन इंसान अऊज़ुबिल्लाह पढ़ के उसको झटक दे। अब वसवसा भी आया तो आप आगे आप उसको खुद लेके चल पड़े, तो वो तो अब आपकी सोच हो गई ना। तो याद रखो अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में, जो तुम्हारे जियो में, तो उससे डरो। तो जहां इंसान अपनी इंटेंशंस करता है, या अपने ख्यालात हैं जिसको कहते हैं, या अपनी सोचे हैं, उनमें भी अल्लाह का खौफ होना चाहिए। इंसान को डरना चाहिए कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, कि वो इंसान इससे भी डरे कि जो उसके पेट में है और जो उसके सर में है, इस तरह से कोई हदीस है, अब मेरे सामने नहीं है वो, यानी जो उसकी सोची है, जो वो सोचता है उसमें भी अल्लाह का खौफ होना चाहिए। इंसान को उसमें भी सोचना चाहिए कि कोई और नहीं जानता मेरी सोचों को, कोई और नहीं जानता मेरे ख्यालात को, लेकिन अल्लाह जानता। और इन चीजों के खिलाफ अगर चल रहा है, जो अहकामात दिए हैं, चाहे कहीं पे भी, चाहे वो रिश्ता डाल रहा है, किसी को नहीं पता चला, उसको औरत को कॉल करके टेक्स्ट करके उसने कोई बात कर दी, किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह को पता है। वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, जान लो अल्लाह ताला बख्शने वाला और हिल्म वाला है, यानी अल्लाह चाहता तो सोचों पे भी पकड़ लेता, अल्लाह चाहता तो जो तुम्हारी सोचे हैं इनके ऊपर भी तुम्हें कुछ सजा दे देता, लेकिन अल्लाह ताला बख्शने वाला है और अल्लाह ताला हलीम है, हिल्म वाला। हलीम मतलब है कि यानी उसका इतना तहम्मुल है कि वो फौरी नहीं पकड़ता। बाज दफा इंसान समझता है ना कि मैंने तो ऐसा सा किया, कुछ भी नहीं हुआ, हम तो अच्छे भले रह रहे हैं, मैंने तो उस वक्त रिश्ता डाल भी दिया था या इद्दत में शादी भी कर ली थी, किसी को पता ही नहीं चला, निकाह बाद में डिक्लेयर किया, शादी पहले कर ली थी, इद्दत में बताया ही नहीं किसी को, और बाद में उस वक्त बताया जब इद्दत खत्म हो गई, ताकि किसी को पता ही ना चले। तो अब सोचता है हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो ऐसे रह रहे हैं, ठीक रह रहे हैं। तो इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पकड़ा नहीं, और क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि वो हलीम है, वो तहम्मुल करता है तुम्हारे साथ। 10 साल गुजर जाते हैं, 20 साल गुजर जाते हैं, इंसान समझता रहता है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सकता है कि वो सारी जिंदगी ना पकड़े और आखिरत में पकड़े। तो हलीम वो होता है जो फौरी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन एक दिन आएगा कि इंसान को पे करना पड़ेगा।